ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا آج یوم شہادت ہے، تعزیت قبول فرمائیے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے کابل میں افغانستان امن کانفرنس، اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جناب ناظرین، یقیناً آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ گزشتہ جمعرات کو کابل میں افغانستان سے متعلق امن کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں علاقے کے 15 ممالک کے وزرائے خارجہ اور اعلیٰ سطحی نمائندے اور اسی طرح علاقے کے باہر کے بعض ملکوں کے وزرائے خارجہ اور نمائندہ وفود نے شرکت کی۔ مجموعی طور پر اطلاعات کے مطابق 40 ملکوں کے وزرائے خارجہ، اعلیٰ حکام اور نمائندہ وفود نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ اس اجلاس کی جو سب سے خاص بات رہی وہ یہ کہ افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے اس اجلاس کی افتتاحی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے علاقائی ملکوں پر زور دیا کہ علاقائی تعاون کے ذریعے ہی افغانستان میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ افغانستان کے صدر کا یہ بیان یقینی طور پر حقیقت پر مبنی ہے، لیکن جب ان کے اس بیان اور امریکہ کے ساتھ ہونے والے افغانستان کی حکومت کے اسٹریٹجک معاہدے پر نظر ڈالی جاتی ہے تو بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں۔ یہی وہ صورتحال ہے جس کا آج کے اس پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے، اور کیا امریکہ علاقائی تعاون کو آسانی سے قبول کرنے پر تیار ہوگا، اور نیٹو اس طرح کے بیان کو کتنی اہمیت دے گا اور اس کے مضمرات کا کتنی سنجیدگی سے جائزہ لے گا۔ چلتے ہیں اس وقت لندن اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں عالمی امور کے ماہر پروفیسر محمد عارف صاحب۔ پروفیسر صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
پروفیسر صاحب، اس اجلاس میں برطانوی وزیر خارجہ ولیم ہیگ بھی موجود ہیں، کیا کہیں گے افغانستان کے صدر کے اس بیان پر کہ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن علاقائی ملکوں کے باہمی تعاون سے ہی قائم ہو سکتا ہے، تو کیا افغانستان کے صدر نے 2001 سے لے کر اب تک امریکہ اور نیٹو کی کارکردگی کو زبان پر لا کر اس حقیقت کا برملا اعتراف اور اظہار کر ہی دیا ہے کہ اگر افغانستان میں بدامنی ہے تو بیرونی ملکوں کی افواج کی موجودگی کی وجہ سے؟
بالکل، آپ کے کئی پروگراموں میں یہ بات زیر بحث لائی گئی کہ افغانستان میں بدامنی کیوں ہے۔ وہ افغانستان میں بدامنی اس لیے ہے کیونکہ غیر ملکی فوجیوں نے اس ملک پر قبضہ کر لیا تھا اور ان کے لوگوں کو بہت تباہی وہاں پر مچائی، انہوں نے ان کے حقوق چھین لیے اور ہزاروں لاکھوں آدمی اس میں شہید ہوئے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان فوجیوں نے جو وہاں بربریت پھیلائی تھی، اس کی وجہ سے وہاں پر ایک انقلابی صورت پیدا ہوئی اور لوگ جو ہے وہ ان فوجوں کے خلاف لڑنے سے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ بھائی وہاں صرف ایک طریقہ ہے امن قائم کرنے کا، وہ یہ ہے کہ علاقائی جو طاقتیں ہیں وہ مل کر کے بیٹھیں اور کوئی حل تلاش کریں۔ اب حالات یہ ہیں کہ امریکہ دیکھ رہا ہے کہ فوج جنگ تو وہ ہار چکا ہے، یہ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی اپنی معاشی حالات بہت خراب ہیں اس ملک کے اندر، تیسری بات یہ ہے کہ عوام جو ہیں امریکہ کے وہ جنگ سے تھک چکے ہیں۔ ابھی اپریل میں ایک سروے ہوا تھا امریکہ میں جس میں 69% لوگ جو تھے امریکہ کے، انہوں نے کہا تھا کہ فوجوں کو فوراً واپس بلایا جائے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ اب امریکہ کی وہ پاور نہیں ہے جو کہ 2001 میں تھی۔ آج امریکہ کی پاور جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے ایشیا میں اور یورپ میں۔ اگر آپ دیکھیں تو آج نئی طاقتیں ایمرج کر رہی ہیں، چائنا، انڈیا، رشیا، ایران، ترکی، برازیل، تو نئی طاقتوں میں اب وہ بڑی جو ایک طاقت تھی وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے۔ تو امریکہ اب یہ تو سمجھ گیا ہے کہ اب وہ جنگ جیت نہیں سکتا، اور دوسری طرف امریکہ میں الیکشن آ رہا ہے، اس میں بھی اوباما ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جنگ ہارے نہیں ہیں بلکہ دوسری طاقتوں کو انوالو کر کے وہاں پر اپنی فوجوں کو واپس بلائیں۔ تو یہ ایک ان کی یہ ترکیب ہے، لیکن اگر انہوں نے فوج رکھی وہاں تو کوئی مسائل حل نہیں ہوں گے اور جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی۔
پروفیسر صاحب، حامد کرزئی نے جو یہ کہا تو کیا یہ سمجھا جائے کہ انہوں نے بالواسطہ طور پر اشارتاً اور کنایتاً افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کی فوجی موجودگی اور ان کے اقدامات اور کارکردگی پر تنقید کی ہے؟ جیسا کہ بھی چند روز قبل لوگر صوبے میں ایک شادی کی تقریب پر حملہ کر کے امریکہ اور نیٹو کے فوجیوں نے متعدد بے گناہ انسانوں کو جن میں بچے اور خواتین بھی شامل تھے جاں بحق کر دیا تھا، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ جو یہ بیان ہے کہ علاقائی ملکوں کے تعاون سے ہی امن قائم ہوگا تو اس کا دوسرا مطلب نکالا جائے کہ نیٹو اور امریکہ کو نکل جانا چاہیے؟
نکل جانا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے امریکہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا پوری طرح سے، لیکن چاہتا ہے پوری طرح سے. ایک تو وہ وہاں پر اڈے رکھنا چاہتے ہیں، ڈرون اٹیک جاری رکھنا چاہتے ہیں وہاں سے، اور وہاں پر اسپیشل فورسز کو رکھیں گے، سی آئی اے والوں کو رکھیں گے، سی آئی اے کے جو لوگ ہیں وہاں رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کرائے کے لے گئے ہیں فوجی ان کو وہ رکھیں گے وہاں. اور ایک بات آپ دم بھولیں کہ جو افغان فوج جو ہے وہ صرف 4% اس میں پشتون ہے، 96% اس میں ازبک اور تاجک ہے، تو وہ فوج جو ہے بہت کمزور ہے، اور اگر جنگ جاری رہی تو نام تو ہوگا افغانوں کا، فوجی تو افغان ہوں گے لیکن ان کے پیچھے امریکہ ہوگا. تو اس یہ پالیسی جو ہے یہ تو بالکل کنٹرڈکشن ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہے. ایک طرف تو آپ نکلنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف اپنا اثر رسوخ جو ہے وہ آپ قائم رکھنا چاہتے ہیں. یہ مسئلہ جو ہے وہ امریکہ کو سالو کرنا پڑے گا، یہ آسانی سے سالو نہیں ہوگا. جو ہے
جی بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں پاکستان کی سینئر صحافی محترمہ فوزیہ شاہی صاحبہ. محترمہ السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترمہ، یہ جو جمعرات کو کابل میں افغانستان امن کانفرنس ہوئی، اس سے پہلے بھی مختلف کانفرنسیں ہوئیں، اس کانفرنس سے کتنی توقعات وابستہ کی جا سکتی ہے، جبکہ حامد کرزئی نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ علاقائی تعاون کے ذریعے ہی افغانستان میں امن قائم ہو سکتا ہے، دوسرے لفظوں میں امریکہ اور نیٹو امن قائم نہیں کر سکتے؟
بہت شکریہ. دیکھیے، جہاں تک علاقائی تعاون کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے، میں چونکہ شروع سے ایک طویل عرصے سے اور آپ کے بھی بے شمار پروگرامز میں اس کا ذکر ہوتا رہا، تو اس میں بھی ہم زور دیتے رہے، اور اس وقت ابھی علاقے کے ممالک کے حوالے سے یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ تمام علاقے کے جو ممالک ہیں وہ مل کے امن قائم کریں، لیکن اس وقت بھی ہمارا یہی نقطۂ نظر تھا اور آج بھی یہ نقطۂ نظر ہے کہ علاقے میں امن جو ہے وہ علاقائی طاقتیں ہی کر سکتی ہیں. ابھی جو کانفرنس دو روز قبل ہوئی جس کو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا نام دیا جا رہا ہے، کیونکہ افغانستان جو ہے ایشیا کے دل کے طور پہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ بالکل مرکز ہے، اس کانفرنس کو لیں، اور چند دن پہلے جو شنگھائی تعاون کی تنظیم کی کانفرنس ہوئی ہے، میں ان دونوں کو انتہائی اہمیت کا حامل سمجھتی ہوں. اس میں بھی وہی ممالک ہیں جو زیادہ تر علاقے کے ممالک ہیں، اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ ابھی جو علاقے شنگھائی کانفرنس ہوئی تھی اس میں واضح طور پہ امریکہ کو جو پیغام دیا گیا کہ وہ علاقے جیسے ازبکستان میں انہوں نے کچھ اپنے مفادات امریکہ نے رکھے ہوئے ہیں، اور اس پہ واضح طور پہ انہیں میسیج دیا ہے کہ وہ اپنے وہاں سے اڈے جو ہیں وہ ختم کریں. مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ اب علاقے کے جو ممالک ہیں ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہو جاتی ہے. جہاں تک افغانستان کی کانفرنس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، گو اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس کو میں سمجھتی ہوں کہ شاید وہ اس میں نہیں ہونی چاہیے تھی. مثلا صدر کرزئی جو ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پھر جو ہے پاکستان پہ ایک الیگیشن لگایا ہے، وہ حقانی گروپ کا جو کچھ عرصہ پہلے وہاں بہت زیادہ اس میں ہوا تھا، دہشت گردی ہوئی تھی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حقانی گروپ نے کہا، پھر اسی طرح یہ کہ پاکستان میں کوئی اڈے ہیں تو ان کو ختم کرنے کے. بات یہ ہے کہ جب تک یہ ممالک ان کے باہمی اعتماد ان میں فروغ نہیں پاتا، اس وقت تک یہ کانفرنسز جو ہیں زیادہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ بلا شبہ یہ جو شعور پیدا ہو رہا ہے عوام میں، یہ شعور پیدا ہو رہا ہے علاقے کے لوگوں میں، یہ شعور پیدا ہو رہا ہے، اور اسی کی روشنی میں جو ہے حکومتیں یہ سوچ رہی ہیں کہ ایک طویل عرصے سے 10-11 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ایک جنگ کی کیفیت ہے، مستقل جو ہے اسی علاقے میں تباہی ہو رہی ہے، جبکہ دوسرے ممالک کی جو فوجیں ہیں جس طرح نیٹو فوج کہا جاتا ہے صاف فوجیں کے یا امریکہ کی فوجیں کے، وہ وہاں صرف ایک جنگ کر رہی ہیں، باقی ان ممالک میں کسی قسم کے اس کے اثرات نہیں پائے جاتے. بلا شبہ اکانومی کے حوالے سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انسانی ہلاکتیں یا جو اگر جو مادہ جو ہلاکتیں کہا جاتا ہے وہ اسی خطے میں ہو رہی ہیں. اگر یہ ملک آپس میں بد اعتمادی کی فضا رکھیں گے تو ان کانفرنسز کے زیادہ بہتر نتائج نہیں ہوں گے. لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ چونکہ ابھی ایک اگلے ماہ یقیناً ایک جاپان میں کانفرنس ہونے جا رہی ہے اسی حوالے سے، پھر اس کے بعد نومبر میں کہا جا رہا ہے کہ استنبول میں کانفرنس ہونے جا رہی ہے. اب یہ کانفرنسز جو ہیں جب خطے میں ہی رہیں گی تو خطے کے ممالک کی جو دلچسپی ہے ان مسائل کو حل کرنے کی وہ بڑھتی چلی جائے گی. اور میں اس وقت بھی جب آپ کا ہی پروگرام تھا جس میں ذکر ہوا تھا، جب اسلام آباد میں سیفری کی کانفرنس ہوئی تھی جس میں افغانستان، ایران اور پاکستان کے صدور جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے ایک خاکہ جو تیار کیا تھا میں نے اس کو بہت زیادہ پر امید قرار دیا تھا، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ابھی تک اگر دیکھا جائے تو پاکستان پہ بھی اور افغانستان پہ بھی یہ ایک واضح طور پہ بات آ جاتی ہے کہ ابھی ان کے جو تعلقات، ظاہر ہے امریکہ سے بہت گہرے تعلقات ہیں اور بہت سے شبہات بھی پائے جاتے ہیں کہ شاید یہ ممالک جو ہیں علاقے سے امریکہ کا انخلا نہیں چاہتے. تو جب ایران میں اس کی موجودگی تھی تو مجھے یہ بالکل ایک، میں خاصی پر امید ہوں بھی، اور کیونکہ ایران جو ہے اس کے بارے میں کہیں یہ شک نہیں آ رہا کہ وہ کسی طرح اس کے امریکہ سے تعلقات ہیں. تو یہ جو کانفرنس ہے جس میں سیفری کی کانفرنس کی بات کہیں یا علاقے کے دیگر ممالک کی کانفرنس کی بات کہیں، تو اس میں ایک چیز بالکل کلیئر ہے کہ ممالک تمام مل کے جو ہیں وہ امریکہ کو یا نیٹو فورسز کو چیلنج کر سکتے ہیں، کوئی اکیلا ملک جو ہے وہ چیلنج نہیں کر سکتا. ایک بڑی پر امید بات ہے، اور وہ ہم جب دیکھتے ہیں خاص طور پہ فرانس کا جو رویہ ہے، 2014 میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے انخلا شروع ہوگا، لیکن فرانس نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ یہ 2012 کے اختتام تک وہ اپنی افواج جو ہے افغانستان سے نکال لے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ آگے موو بھی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ اگر ہم برطانیہ کو دیکھتے ہیں یا دوسرے ممالک جن کی افواج یہاں ہیں، وہاں بھی عوام میں بے چینی پائی جاتی ہے. اور جس طرح بھی پہلے بات کی جا رہی تھی کہ امریکہ کے عوام جو ہیں وہ بھی کسی
طرح، بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں.
نہ صرف اگر ان کے مالی وسائل کے حوالے سے دیکھیں یا افواج کی یہاں جو موجودگی ہے اور بہت بڑی جو ان کی ہلاکتیں جہاں ہوتی ہیں، تو وہ بھی مطمئن نہیں ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تمام ملک جو ہیں، علاقے ممالک ہوں یا جتنی بھی علاقائی تنظیموں کی، میں چونکہ بہت زیادہ حامی ہوں اور میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے یونی پولر ورلڈ میں اپنی بقا ہے آپ کی، اگر آپ نے اپنی ایگزسٹنس جو ہے برقرار رکھنی ہے، تو آپ کو مل کے چیلنج کرنا پڑے گا. اور اس وقت میں یہ سمجھتی ہوں کہ چاہے آپ علاقے کے تمام ممالک، آپ چاہے روس کی بات کریں، چاہے آپ چین کی بات کریں، چاہے آپ ایران کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں، بھارت کی بات کریں، یا وہ ممالک جو براہ راست اس دہشت گردی سے وابستگی یا ان کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہی ممالک جو ہیں وہ جان سکتے ہیں ہزاروں میل دور سے آئی ہوئی افواج جو ہیں وہ یہاں بے چینی پیدا کریں گی.
بہت شکریہ آپ کا محترمہ، میں پھر حاضر ہوں گا.
علاقے کی جو تنظیمیں ہیں، چاہے وہ افغانستان کی کانفرنس یا میں پھر ایک دفعہ شنگائی جو تعاون کی تنظیم ہے اس کا میں ضرور ذکر کروں گی، ان قوتوں کو باقاعدہ طور پہ امریکہ کو چیلنج کرنا پڑے گا کہ وہ علاقے سے مکمل اڈے ختم کریں.
بہت شکریہ. چلتے ہیں لاہور، جہاں پر اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں عالمی امور کے ماہر ممتاز دانشور پروفیسر فاروق حسنا صاحب. السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام.
فاروق حسنا صاحب، شنگھائی کانفرنس کے بعد کابل میں افغانستان امن کانفرنس ہوئی، اس میں بیشتر علاقائی ممالک تھے اور علاقائی تعاون کی ضرورت پر زور دیا گیا. یہ وہ موقف ہے جس پر ایران گزشتہ 10-12 برسوں سے زور دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک علاقے میں اور خاص طور پر افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کے افواج موجود رہیں گے اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا. امن قائم ہونا تو دور کی بات ہے، بدنی میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور اسی بات کا اعتراف حامد کرزئی نے بھی کیا. تو ایک طرف تو حامد کرزئی یہ کہہ رہے ہیں کہ علاقائی تعاون کے ذریعے ہی افغانستان میں امن قائم ہوگا، اور دوسری طرف امریکہ سے اسٹریٹجک معاہدہ کر رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟
جی، اس میں کرزئی صاحب کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ پہلے تو اسی عزم کے ساتھ یہ سارا نظام بنایا گیا تھا کہ افغانستان میں کسی حد تک امن امان ہو جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ جو اداروں کی تشکیل ہے وہ بھی شروع ہو جائے گی، جس میں پارلیمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، और सबसे बढ़कर नेशनल फौज की तश्कील करना। लेकिन जैसे साल गुजरते गए हमने यही देखा कि करजई साहब उसमें कामयाब नहीं हुए, उनकी हुकूमत करप्शन का शिकार है और बैड गवर्नेंस का शिकार है, और इसका असर पड़ा अमेरिका की जो यहाँ पे हिकमत अमली इस इलाके में उस पर, क्योंकि अमेरिका फिर वो नतायज हासिल नहीं कर सका जो वो अफगानिस्तान में चाह रहे थे, और वो चाह रहे थे कि हालात ऐसे हो जाएं कि कम से कम अफगान जो हैं खुद वो किसी हद तक मामलात को अपने हाथ में ले लें और ताकि उनको बाहर निकलने का मौका मिल सके। चूंकि अमरीका ने और नेटो फोर्सेज ने, खासकर अमरीका ने ये सोच लिया, ये समझ लिया था कि वहां पर उनको कामयाबियां नहीं हो रही और जो उन्होंने अंदाजे लगाए थे वो कामयाब नहीं हुए, अफगानिस्तान में अमन नहीं आया, उनका वहां पे कंट्रोल नहीं हुआ, अभी तक उसी तरह की बेचैनी है, और फिर सबसे बढ़कर जो अदारे हैं वो भी तश्कील नहीं पा रहे, तो इसलिए और अमरीका की अपनी हालत भी कुछ इकोनॉमिक वो ठीक नहीं है कि वो सस्टेन कर सकें इस किस्म की ऑक्यूपेशन जो उन्होंने कब्जे किए हुए हैं। तो उसमें तो फिर यही है कि करजई साहब के ऊपर जो वो कर रहे थे इन्हिसार, उसमें उनको नाकामी हुई। लेकिन करजई साहब जो है वो तो हुकूमत पे वो रहना चाहते हैं और इसलिए वो हाथ पांव इधर उधर मारते हैं, जहां भी उनको कोई रास्ता नजर आता है उसकी तरफ वो जाते हैं। एक बहुत डेलीकेट सा, बहुत नाजुक सा वो बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी तालुकात बनाए हैं, कभी बुरे कभी अच्छे हो जाते हैं, ईरान के साथ भी उनके रवाबित हैं, अमेरिका के साथ भी वो चाहते हैं कि जो सिक्योरिटी के मामला हैं ये फौरी तौर पर जो है वो अमेरिका वाले इतनी तेजी के साथ बाहर ना निकलें, तो वो एक इस तरह की वो करें। लेकिन इस तरह लीडर्स उसी वक्त करते हैं जब वो अपने अंदर उनको यकीन नहीं होता और कोई वाज़ह पॉलिसी तश्कील वो नहीं दे सकते। लेकिन चलिए ये सारे मामला मान लें, अगर करजई साहब इसी बात पे आ जाते हैं कि जो इलाकाई ममालिक हैं उन जब तक वो तावुन नहीं करेंगे यहाँ पे दूर पा अमन नहीं होगा और ना ही उनके अदारे तश्कील पाएंगे। इसलिए सबसे देखिए जरूरी अफगानिस्तान में बात यह है कि अफगानिस्तान में एक अच्छी खासी हुकूमत होनी चाहिए और पहले की तरह हालात ना हो, कोई ऐसे वैक्यूम ना क्रिएट हो जाए, कोई ऐसे इलाके जो हैं वो जो काबुल है उसकी पहुंच से बाहर हो और पहले की तरह जिस अलकायदा वालों को फिर मौका मिल गया, या मैं तो यहाँ ये भी कहूंगा कि तालिबान जैसी जो कतर किस्म की तंजीमें उनको मौका मिल गया वहां पे फरोग पाने का, तो वो ऐसी सूरत हाल भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो इलाके के किसी भी मुल्क के मुफाद में नहीं है। अभी आज ही चंद घंटे पहले लंडी कोटल में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कई लोग मारे गए, तो ना खत्म होने का एक सिलसिला है जिसमें बेशुमार लोग मारे जा रहे हैं और उसका असर अफगानिस्तान के जो हमसाया ममालिक हैं उनके ऊपर भी बहुत बुरा पड़ रहा है। तो जैसे आपने सही कहा, ईरान का हमेशा से नुक्ता नजर रहा है और बहुत बिल्कुल सही रहा। देखिए जब आप पहले भी तारीख में पीछे चले जाएं तो वहां पे भी तालिबान की जो हुकूमत भी हालांकि थी, पाकिस्तान के बहुत से जो एस्टेब्लिशमेंट के यहाँ पे अदारे हैं वो उनके साथ मिलकर उनको वो उनको सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी ईरान पाकिस्तान का और एक बातचीत का सिलसिला दोनों ममालिक के दरमियान हम देखते हैं। मैं कल ही अपनी फाइल्स में देख रहा था कि बेशुमार दौरे हुए ईरान के वजीर खारजा पाकिस्तान आते थे, पाकिस्तान के उधर जाते थे, एक्सचेंज ऑफ व्यूज बहुत ज्यादा वो जमाने में चल रहा था। और बल्कि रूस भी जब वहां आया, हालांकि अमेरिका उसकी मुखालफत कर रहा था, फिर भी ईरान ने एक बहुत प्रिंसिपल स्टैंड लिया था और ये कहा था कि रूस को वहां पे नहीं आना चाहिए सोवियत यूनियन, इसके बावजूद कि अमेरिका जो मुखालिफ फरीक थे जो लड़े थे रूस के वो उनके हमायत कर रहे थे, लेकिन वो प्रिंसिपल स्टैंड लिया था। और वहां भी देखते हैं कि रवाबित बहुत ज्यादा थे पाकिस्तान और ईरान पे, एक लंबा सा मैंने लिस्ट बनाई है, बहुत लंबी लिस्ट है। तो फिर ये क्या बात है कि अब ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो चलिए वो कामयाब नहीं हुआ, अफगानिस्तान बद से बदतर होता गया, वो अफगानिस्तान के मसले हैं उनके जाती, लेकिन कोशिश तो इलाकाई ममालिक की तरफ से जरूर इसी खतूत का होनी चाहिए।
प्रोफेसर साहब मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। जी शुक्रिया आपका। मोहम्मद आरिफ साहब आप क्या कहना चाहेंगे, इलाकाई ताउन का रुझान जाहिर है कि पाया जा रहा है और न सिर्फ इस इलाके में बल्कि दुनिया के तमाम इलाकों में ये रुझान तकवियत पाता जा रहा है और जड़ तो पकड़ चुका है। तो अफगानिस्तान जहाँ 2001 से अमरीका अपने पंजे गाड़े हुए हैं, क्या आसानी से इस तरह के तआवुन की राह हमवार होने देगा आपके ख्याल में, और अगर नहीं तो क्या क्या कर सकता है वो?
देखिए, अगर देखिए एक बात तो क्लियर है कि करज़ई हुकूमत जो है वो कमज़ोर हुकूमत है, जैसा प्रोफेसर ने कहा कि उसमें करप्शन भी है और फ़ौज जो है वो पश्तून फ़ौज नहीं है। तो एक कमज़ोर फौज, एक कमज़ोर हुकूमत अमेरिका के जाने के बाद मजबूत कैसे हो सकती है, ये तो समझ से बाहर बात है। और जहाँ तक रूसियों का सवाल है, रूसियों को कभी नहीं आना चाहिए था वहाँ, लेकिन एक बार आपको मानना पड़ेगा कि जब रूस छोड़ के गए थे और नजीबुल्लाह की हुकूमत को, तो नजीबुल्लाह की हुकूमत 3 साल तक कायम रही वहाँ। जब रूस का आखिरी सिपाही जा चुका था उसके बाद भी 3 साल तक नजीबुल्लाह की हुकूमत कायम रही, और 1 साल उसकी हुकूमत कायम रही जबकि रूस मर चुका था, ख़त्म हो चुका था। तो वहाँ की हुकूमत काफ़ी कामयाब थी। मेरा ख्याल करज़ई साहब में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो 4 साल तक या 3.5 साल तक, या मैं समझता हूँ कुछ महीनों तक ख़ुद हुकूमत कर सकें बग़ैर किसी मसलहत के। इसलिए ज़रूरी है कि मसलहत की जाए इस मसले पर, और तमाम फैक्शन जो हैं, ख़ासकर तालिबान जो हैं, जिसके जो कि जिनके ऊपर आईएसआई का अभी काफ़ी असर है, अगर आईएसआई पर प्रेशर डाला जाए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस पर कि वो तालिबान पर ज़ोर डाले कि वो मज़ाकात में हिस्सा लें और एक मखलूत हुकूमत बनाने पर तैयार हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा अमन की तरफ। यहाँ तक इसका ताल्लुक है कि मखलूत हुकूमत बनाई जाए, साथ ही साथ मेरा सजेशन होगा कि पावर जो है वो प्रोविंसेस को दी जाए इसके बजाय कि काबुल में रखी जाए जो इस वक्त है जो है, और तमाम इलाकाई मुल्क जो हैं वो उस अमन की गारंटी करें उस इलाके में। और जो सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो मगरबी फौजें हैं वहाँ पर उनका एक एक सिपाही वहाँ से निकल जाए, और अफगान हुकूमत को यह गारंटी की जाए कि उसको कुछ साल तक माली इमदाद दी जाएगी जब तक वो पनप ले पाए। सिर्फ इसी तरह वहाँ अमन कायम हो सकता है, इसके अलावा और कोई तरीक़ाकार नहीं है।
जी मोहतरमा फौजा शाह साहिबा, आप देखें कि एक तरफ तो बात ये हो रही है कि 2014 तक फौजें निकाली जाएंगी, और दूसरी तरफ वक्फे से खुद अमरीकियों की तरफ से और ख़ुद नेटो के सेक्रेटरी जनरल रासमुसन की तरफ से बयान आता है कि हमारे फौजी 2014 के बाद भी बाकी रहेंगे और अफगानिस्तान को हम ऐसे ही रहम करम पर नहीं छोड़ देंगे, तो ये कैसा इनखला और कैसी मौजूदगी?
देखिए, एक चीज़ क्लियर है और मैं इस पे बिल्कुल यकीन रखती हूँ कि 2014 हो या उसके बाद, अमेरिका जो है किसी ना किसी तरह वहाँ अपनी मौजूदगी बरकरार रखेगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, दूसरी तरफ जो है, जो बहुत अहम है, जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं इलाके ममालिक की जो ताकत है, और तमाम ममालिक जो हैं सिर्फ वो एक वाहिद ताकत है कि जो इतना प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं कि ये अफवाज जो हैं मुकम्मल तौर पे वहाँ से निकलें। लेकिन वही बात जो मैंने पहले अर्ज़ की थी कि जो प्रेसिडेंट करज़ई हैं, सदर करज़ई की जो बात है, उनमें वो ख़ुद बाज़ुकात इलाके के ममालिक के हवाले से कुछ इबहाम पैदा कर देते हैं, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर की बात होती है। जब आप कॉन्फिडेंस अपने इलाके में नहीं करेंगे तो यहाँ अमन का क्याम भी इतना ही दूर होता चला जाएगा। ज़रूरत इसमें तमाम जो ममालिक हैं उनकी ज़रूरत यह है कि वो बाहमी एतमाद जो है उसको फ़रोग दें और उसी एतमाद को लेते हुए आगे चलें। जहाँ तक अफगानिस्तान के अगर अमन की बात की जाए तो यकीनन ये जो इलाकाई कोशिशें हैं बहुत अहम हैं, लेकिन सबसे अहम ये है कि अफगानिस्तान के जो तमाम सियासी कुव्वतें हैं उनको मुत्तहिद किया जाए, और अभी तक उस सिलसिले में हमें कोई कोशिश दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि जब तक, और ये यकीनन वहाँ की हुकूमत की जो कहा जाता है कि सिर्फ काबुल तक महदूद है या कुछ इलाके पे है, लेकिन उसको तमाम उन कुव्वतों को मिलाना पड़ेगा। अगर उसके सिलसिले में वहाँ गोल मेज कॉन्फ्रेंसिस का इनकार किया जाता है या कोई भी सिलसिला इख्तियार किया जाता है, उसमें आप किसी की मीडिएशन भी ले सकते हैं। मसलन तुर्की के हवाले से अगर उनके एक बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, या किसी के पाकिस्तान के अगर ताल्लुकात हैं, या किसी के भी ताल्लुकात हैं, उनको आप इस्तेमाल करते हुए आप उनसे बिल्कुल गोलमेज पे बैठें, आप कॉन्फ्रेंस करें। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने की अफ़गान हुकूमत पे है, बजाय इसके कि अगर हम इल्ज़ाम देते रहेंगे या हमद करज़ई साहब पाकिस्तान को इल्ज़ाम देते रहें कि यहाँ कोई अड्डे मौजूद हैं। और आपको इल्म है कि इसी आड़ में पाकिस्तान में जो एक सिलसिला चल रहा है ड्रोन हमलों का, उससे जो एक शहरी आबादी जो एक बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। अब उसकी अभी तक जो तफसील तो नहीं आती कि उसमें दहशतगर्द कितने मारे गए, शहरी आबादी जो है यकीनन उससे मुतासिर हो रही है, बच्चे जो हैं उसमें मारे जा रहे हैं। तो ये अगर आप उस आड़ में पाकिस्तान के कुछ इलाकों को सिर्फ निशाना बनाते चले जाते हैं तो वो भी एक इलाके में अमन की राह में रुकावट होगा। मैं ये समझती हूँ कि हामिद करज़ई को बहुत संजीदा रवैया इख्तियार करना पड़ेगा, अपनी तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको लेके साथ चलना पड़ेगा, और जब तक ये वहाँ एतमाद अपने आपस में नहीं कर सकते बाकी जो हल हैं वो उसमें असरअंदाज नहीं होंगे। दूसरी बात, आपने जो बहुत अहम बात की थी मैं उस तरफ भी तवज्जो ज़रूर दिलाना चाहूँगी। पहले जो स्ट्रेटेजिक माहिदा था पाकिस्तान और अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो माहिदा था, और कुछ अरसे से सलाला चेक पोस्ट के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो उस तरह बेहतर नहीं रहे, और बल्कि मैं उसको समझती हूँ कि एक कशीदगी से दो चार हैं, चाहे उसमें पाकिस्तान के साथ इक्तसादी ताल्लुकात मुतासिर हो रहे हैं उसके साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी मुतासिर हो रहे हैं। अब ये एक पाकिस्तान को सिर्फ ये पहलू दिखाते हुए कि उससे जो ताल्लुकात ख़राब हुए हैं भारत की जानब जो उसका रजू किया जाना है वो भी बाइस तशवीश है। इलाके के जो ममालिक हैं उनको ये भी देखना पड़ेगा कि भारत के साथ जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जो अभी जो भारत अफगानिस्तान और अमेरिका का जो माहिदा हुआ है वो भी इलाके में अमन कायम नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान और भारत शुरू से एक ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात के हामिल ममालिक नहीं रहे, और अगर ये इस तरह की कहीं एक ऐसा खला छोड़ा जाता है कि एक जो टेंशन का जो कोई ना कोई हिस्सा रह जाए तो उससे आपकी तमाम कोशिशें जो हैं वो नुकसानदेह होंगी। और दूसरी जानिब जो मैंने अभी जिक्र किया था कि जैसे आइंदा जो इसी माह या अगले माह जो कॉन्फ्रेंस जापान में इस हवाले से होना जा रही है वो भी हमें बहुत संजीदगी से देखना पड़ेगा, क्योंकि जापान जो है वो अभी तक और बिल्कुल यहाँ वाजे तौर पर मैं ये कह सकती हूँ कि जापान की जानिब से जो पाकिस्तान में भी उनके सफ़ीर हैं या जो जापानी हमेशा सफारतकार हैं उनका वाजे ये मौक़िफ़ होता है कि अमेरिका की जो पॉलिसी होगी अगर किसी ने एड भी देनी है तो जो अमेरिका की पॉलिसी होगी उसके मुताबिक वो देंगे, इससे हटके वो कुछ नहीं करेंगे। तो ये भी जो मसला है कि अगर आपने कोई भी मुल्क जो है सिर्फ अमेरिका की डिक्टेशन पे चलता है तो वो इलाके में हमारा मैं समझती हूँ कि अमन कायम नहीं हो सकता। मैं ये फिर बार बार ये कहूँगी कि इलाके में अमन उसी सूरत में कायम हो सकता है कि हजारों मील दूर से आई हुई अफवाज जो है वो मुकम्मल तौर से यहाँ से निकलें, उनके मफादात यहाँ ख़त्म हो, और जब तक उनके मफादात यहाँ ख़त्म नहीं होते अमन जो है उसका कायम होना मुश्किल है। अब ये कहा जाए कि अगर अमेरिका का इनखला हो जाएगा और अफगानिस्तान कोई इंतहाई दरगू सूरत हाल से दो चार होगा तो मैं इस पर यकीन नहीं रखती कि इलाके के जो ममालिक हैं जब वो ये एक अयादा करते हैं जिस तरह पहले मैंने जिक्र किया बीजिंग में होने वाली कॉन्फ्रेंस का, तो उसमें भी इलाके के ममालिक ने वाज़े तौर पे ये इंदिया दिया कि वो अफगानिस्तान की तरक्की के हवाले से उसमें अपना किरदार अदा करेंगे, और पाकिस्तान गो इतने ज़्यादा बेहतर मुआशी बेहतर हालात से दो चार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने मुख्तलिफ औकात में चाहे थोड़ी रकम कही जाए लेकिन इमदाद के तौर पर हमेशा दी है। ये एक गुड जेस्चर होता है, और इसी तरह बाकी इलाके के ममालिक मैं समझती हूँ कि चाहे वो रूस होगा चीन होगा, रूस के सदर ने भी वाज़े तौर पर अफगानिस्तान में जो समाजी तरक्की है उसकी उन्होंने कहा कि वो अपना भरपूर किरदार अदा करने को तैयार है, चीन की जानिब से ये कहा गया है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर इलाके के ममालिक इतनी मजबूती के साथ अफगानिस्तान की तरक्की की बात करते हैं तो शायद वो हज़ारों मील दूर आए हुए जो मैं उनको इन्वेडर कहती हूँ कि वो उनको हम काउंटर कर सकते हैं इलाके के ममालिक।
बहुत शुक्रिया आपका,
सबसे ज्यादा अहम यही है
शुक्रिया आपका।
इलाके के ममालिक मुस्तकबिल का लाए अमल क्या बनाते हैं अफगानिस्तान की तरक्की के हवाले से और इसके साथ साथ इलाके में अमन के हवाले से।
जी फारूक हसना साहब, आप देखें कि 2001 के बाद जैसे ही उनको अपने एतबार से यानी अमरीकियों को कामयाबी नसीब हुई उनके अपने जोन में अपने ख्याल में, अगरचे वो तो बार बार इस बात का एतराफ़ करें कि उन्हें शिकस्त हुई है, लेकिन उसके बाद से वो ये कहना उन्होंने शुरू कर दिया कि हम अफगानिस्तान में वहाँ की पुलिस वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ की फ़ौज को ट्रेनिंग देंगे, उनको असलाह देंगे, जदीद असलहों से लैस करेंगे, उनको वो असलाह इस्तेमाल करना सिखाएंगे, लेकिन 10-11 साल का अर्सा, 12 साल का अर्सा गुजर जाने के बाद न सिर्फ ये कि आज तक अफगान फोर्सेस को उन्होंने ट्रेनिंग नहीं दी, न उन्हें जदीद असलहों से आरास्ता किया, लैस किया, और न ही सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उनके हवाले की। ये वादा करके और इस तरह के बातों से मुकर जाना, सरफ नज़र कर जाना, ये इसके पीछे क्या मुहरकात और मजमरात हो सकते हैं? क्या अगर 11 साल के अरसे में अफगान फोर्सेस को ट्रेनिंग दी जाती, वो तरबियत याफ्ता हो जाते, तो आज वो इस लायक ना होते कि अपने मुल्क का अमन अमान खुद संभाल सकते?
ये असल में बात यह कि ये इनके बस में नहीं रही बात, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, इनका ख्याल था कि हम गलबा पा लेंगे पूरे इलाके के ऊपर और एक खासा बड़ा जो आबादी का हिस्सा है उसको अपने साथ मिला लेंगे, और जब अफगान हुकूमत कायम होगी तो फिर वो दूसरे मुख्तलिफ धड़ों को भी साथ मिलाएगी, हुकूमत साज पॉलिसीज में या हुकूमत में मिलाएगी, पार्लियामेंट के भी इलेक्शन हुए, हमने देखे इंतखाबात हुए, लेकिन वो बात बनी नहीं। तो एक तो अमन वहाँ कायम नहीं हो सका, और अमरीका का जो फौजी लिहाज से भी अमरीका वहाँ कामयाब नहीं हुआ, इक्तसादी तौर पर भी कामयाब नहीं हुआ, कोई वहाँ पे डेवलपमेंट जैसे मैंने कहा वो वहाँ पे पहले नहीं हुई। तो अगर ये दोनों चीजें नहीं हुई और एक कम से कम एक वर्केबल, कम से कम एक ऐसा तो अमन होता जिसमें कुछ ना कुछ इस किस्म की चीजें की जाती, जैसे अदारों की तश्कील पे मैं जोर तो दूंगा, उसमें ये फौज भी आ जाती है, पुलिस का भी आ जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस का भी आ जाता है, लेकिन वो तो शुरुआत कर ही नहीं सके उसके ऊपर। जैसा लेकिन इराक में जाके उनके जो अंदाजे थे, प्लान बी भी नहीं था उस सिलसिले में, कि वो था उन्हीं का तेल निकालेंगे, उन्हीं के ऊपर खर्च करेंगे और वहां पे तसल्ली अपना रखेंगे, कंट्रोल वो नहीं हो सका। इसी तरह यहाँ पे भी उनके अंदाजे कामयाब नहीं हुए और उस वजह से ये वो नहीं कर सके, और फिर मजबूरन उनको ये करना पड़ा कि जो वॉर लॉर्ड्स हैं, जो कि जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है बॉसों का, उनके उनके हवाले इन्होंने मामलात कर दिए, और बहुत जगहों पे करज़ई हुकूमत भी उनके आगे बेबस नजर आई, इसलिए वो उस किस्म का निज़ाम और तश्कील नहीं पा सका। यही अफगानिस्तान की हम समझिए बहुत एक बदकिस्मती है, ट्रेजेडी है कि वहाँ पे एक अभी तक एक मिनिमम भी जिसको हम कहते हैं मामलात इस तरह के भी नहीं हुए जहाँ पे कोई एक चीज की भी शुरुआत की जा सके। अब देखिए वो तो ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस का बनाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बहुत बड़ा आबादी का हिस्सा एथनिक बुनियादों पर पश्तून जो एलिमेंट है वो तो उनके साथ नहीं है बिल्कुल, तो अब 40% है, कुछ लोग कहते हैं 45% है, जो भी है, अगर वो ही साथ नहीं है तो फिर किस किस्म की कौमी वहाँ पे फौज बनेगी या किस किस्म का सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ पे तश्कील पाएगा, वहाँ तो फिर वॉर लॉर्ड्स ही आगे आगे उसके आएंगे। इसलिए मैं ये कहूंगा कि अगर वो कोशिश भी करते अमेरिका वाले तो उसमें वो कामयाब नहीं वो हो सकते थे, इसलिए कि वो बेसिक जो बुनियादी अमन है उसको वो पूरे इलाके पे वो कायम नहीं कर सके। कुछ पॉकेट्स हैं थोड़ी बहुत, जैसा काबुल के ऊपर उनका होगा और बाकी ऐसे एक दो तो जगह और पे होगा, लेकिन आम जो अफगानिस्तान का के इलाके हैं जो बाहर, जितना काबुल से आप दूर तक चलते जाइए उतना उनका असर खत्म होता जाता है नेटो अमेरिकन फोर्सेज का और इवन अफगान हुकूमत का भी। तो इसलिए इन हालात में तो वो उनके, मैं एक लफ्ज में ये कहूंगा कि उनके काबू में नहीं रहा, उनके
जी बहुत शुक्रिया आपका
बात निकल गई बात
जी। प्रोफेसर आरिफ साहब, आपने यकीनन चंद माह कबल ज़ोर शोर से खबरें सुनी होगी कि बॉन में मुज़ाकरात हो रहे थे तालिबान से अमेरिका के, फिर दोहा में हुए, और फिर ये हुआ कि दोहा में तालिबान का दफ्तर खोलने की अमेरिका ने इजाज़त दे दी, और ये भी कि कुछ उनके सीनियर लीडर जो है वो गुंतानामो बे जेल से रिहा होकर दोहा मुंतकिल हो चुके, वगैरह वगैरह। बहरहाल मुज़ाकरात की दोनों तरफ से तस्दीक और तायद हुई, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि मुज़ाकरात अमेरिका और तालिबान के तातुल का शिकार हैं, क्यों ऐसा हुआ?
इसके कई वजूहात हैं। पहली बात तो अमेरिका कहता है कि आप ये लोग हथियार डाल दें अपने, उसके बाद डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल हों। दूसरी तरफ करज़ई कहते हैं कि उनको मुज़ाकरात उनसे करना चाहिए, अमेरिकनों से नहीं करना चाहिए, जबकि तालिबान ये कहते हैं कि हम डायरेक्ट मुज़ाकरात अमेरिका से करेंगे, क्योंकि वही ऑक्यूपाइंग फोर्स है, वही ताकत है जो वहाँ पर हुकूमत कर रही है, और वही उन्हीं से हम बात करेंगे। तो एक तो ये बात हुई, और दूसरी बात यह है कि करज़ई की हुकूमत जो है वो सिर्फ करप्ट नहीं, बल्कि वो अब जिस बात को वो उठा के चले थे कि हम डेमोक्रेसी रखेंगे, ह्यूमन राइट रखेंगे और लोगों के हकूक दिलाएंगे, वो भी वहाँ से मुकर गए। अभी मैं परसों देख रहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है सॉलिडरिटी ऑर्गेनाइजेशन काबुल में, जिसने एक अभी एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया कि जो लोग वार क्राइम जिन्होंने किया है सबका ट्रायल किया जाए, उस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने बैन कर दिया। तो हालात ये हैं कि लोग करजई के साथ नहीं हैं इस वक्त जो है, और जहां जब लोग उनके साथ नहीं हैं तो उनसे मज़ाकरात करके कोई अमन कायम नहीं हो सकता। जहां तक तालिबान का ताल्लुक है, तालिबान से मज़ाकरात होंगे, हो रहे हैं और मेरे ख्याल होंगे कि एक मखलूक हुकूमत कायम की जाए। लेकिन ये ज़रूरी है कि ISI जो है वो, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस, वो तालिबान पर जोर डाले कि वो इन मज़ाकरात को कामयाब बनाने में मदद करें। जब तक ये नहीं होता है ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है काफ़ी अरसे तक वो ये रही है, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ, कि हम वहाँ पर ऐसी हुकूमत हो जो हमारे हमसे दोस्ती रखे और हमारी मदद करे ना। वो ज़माना गुजर गया, अब लोग जो है दूसरी तरफ देख रहे हैं कि भाई वहाँ डेमोक्रेसी हो, इक्वलिटी हो लोगों की, और इंडिया से भी ताल्लुकात पाकिस्तान के ठीक हों। तो अब वो वक्त गुजर चुका है, इसलिए ज़रूरी है कि ये मज़ाकरात जो हो रहे हैं और या जो होंगे उनको पूरी तरह से मदद की जाए कि कामयाब हों, और अमेरिका से इंसिस्ट किया जाए कि भाई आप पूरी तरह से इस इलाके से निकल जाएं। जहाँ तक ईरान ने बिल्कुल, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में कहा कि सारी प्रॉब्लम यहाँ इसलिए है क्योंकि बाहर की फौजें यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बाहर की फौजें निकल जाए तो ये जरूर ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर अम कायम हो जाएगा और मुल्क को तरक्की होगी। तो इन हालात में अमेरिका को, अमेरिका वहाँ रह नहीं सकता, ये तो अब क्लियर हो गई है। चाहे अभी निकले या दूसरी तरह निकलें या किसी और तरीके से वो कायम रहने की कोशिश करें, वो लॉन्ग टर्म में नहीं रह सकते जो है। तो इससे बेहतर है कि तमाम इलाकाई मालिक जो हैं वो मिलकर जोर डालें कि भाई अमेरिका आप जाएँ, हम इस इलाके को साल्व की प्रॉब्लम खुद साल्व कर लेंगे।
जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा फौजिया शाही साहिबा। बात चल पड़ी है अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात की। आप देखें कि जिस वक्त ये मुज़ाकरात हो रहे थे और मुज़ाकरात की खबरें मंजर आम पर आई थी, तो उस वक्त ये बात भी सामने आई थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बाईपास किया या हाशिए पर डाल के बरह रास्त तालिबान से मुज़ाकरात शुरू किए। तो क्या ये अमेरिका की गलती और भूल थी या इसमें भी कोई साजिश थी? और चुनांचे वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी ने दोहा का दौरा किया और बाज़ मुबस्सिरीन का कहना है कि उसके बाद ही ये जो तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात की खबरें थी वो मान पड़ गई, मद्दीम पड़ गई और यहाँ तक कि ये मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए। तो क्यों ऐसा हुआ आपके ख्याल में कि पाकिस्तान को अगर जानबूझ के अमेरिका ने अलग रखने की कोशिश की तो क्यों?
देखिए, एक तो ये है कि अमेरिका जो है, जिस तरह पहले भी हम बात कर रहे हैं बार बार कि अमेरिका ने कभी भी पाकिस्तान को अगर इस्तेमाल किया है तो वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, वैसे वो खुद ही तकरीबन तमाम करना चाहते हैं। जहाँ तक अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात जो हो रहे थे मुख्तलिफ जगह हुए थे और अब जो उनमें एक तातुल आया है, उसकी बुनियादी वजह एक जो उन्होंने तीन अपने जो मुतालबा दिए थे उसमें एक बहुत अहम मुतालबा था, और वो मुतालबा ये था कि उनके जो रहनुमा ग्वांतानामो बे में जो बंद हैं उनकी रहाई का उन्होंने मुतालबा किया था, और जिस पे उसमें उन्होंने कुछ टाइम दिया, अमेरिका को भी टाइम दिया, अमेरिका भी उस पे उनकी कुछ बातचीत हो रही थी कि उसके हवाले से क्या किया जाए। तो ये तातुल जो है वो एक तो बड़ा तातुल उसकी वजह से आया था। दूसरी बात यह है कि यकीनन पाकिस्तान को अब ये अगर जो भी इसका अमन का प्रोसेस शुरू होता है या किसी भी हवाले से कोई डेवलपमेंट की बात होती है, पाकिस्तान को किसी तरह अलग नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान अभी की सिर्फ मुतासर मुल्क नहीं है, हम ये देखते हैं कि 1979 से लेके अब तक पाकिस्तान इंतहाई बुरी तरह मुतासर है, चाहे वो उसमें रूस का आना गलत था या नहीं था, मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगी, और या अभी अगर गैर जो बैरूनी अफवाज जो वहाँ बैठी हैं उनका गलत है, इसको अगर अलग भी रखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो मुस्तकिल जो है अगर देखा जाए तो 80 की दहाई में, 90 की दहाई में और अभी फिर ये 2000 की दहाई और ये 30-32 साल से मुस्तकिल जो है पाकिस्तान ये सफ़र कर रहा है। और इसमें अगर चाहे वो हम अफगान महाजरीन की बात करते हैं, वो अभी भी पाकिस्तान में 30 लाख के करीब हैं और 30 लाख से उनकी आबादी यहाँ इतनी हो गई है, दो नस्लें उनकी यहाँ बड़ी हो चुकी हैं, वो भी यहाँ का हिस्सा बन चुकी हैं। तो पाकिस्तान की आबादी पे जो उसका बोझ है या पाकिस्तान के वसाइल पे बोझ है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और फिर ये दहशतगर्दी की जो जंग है जो 2001 में शुरू हुई है, ये किसी तरह गलत नहीं है कि पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा इसका मुतासिर हुआ है, पाकिस्तान अभी भी मुतासिर हो रहा है, पाकिस्तान के कोई इलाका जो है महफूज नहीं रहा, सुसाइडल जो अटैक्स होते रहे या दूसरे बॉम्ब ब्लास्ट होते रहे, और क्वेटा को भी देखते हैं, बलूचिस्तान को हम देखते हैं, हमारा खैबर पख्तूनख्वा सूबा जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ, हमारे दूसरे सूबे भी जो है इससे बच नहीं सके। और फिर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अगर ये कहता है कि उसको $70 बिलियन से ज़्यादा जो है इससे नुकसान हुआ है तो वो गलत नहीं है। फिर 40,000 के करीब हमारी इंसानी जो जाने तलफ हुई हैं। अब अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान इसको बिल्कुल अलग करके और मामला ऊपर तय करें तो मामला वो बेहतर नहीं होंगे और अमन भी कायम नहीं होगा। अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान का अफगानिस्तान का बाहमी एतमाद बहुत ज़रूरी है और तमाम जो इलाके की कुव्वतें हैं, मैं इलाके की कुव्वतों को ज़्यादा अहम समझती हूँ, और जब तक इलाकाई कुव्वतें जो हैं वो मुत्तहिद नहीं होती इस खित्ते में अमन का क्याम मुमकिन नहीं है। और दूसरी ये कि जब अभी बात अफवाज की बात कर रहे हैं, अफगान अफवाज की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले जैसे मैंने जिक्र किया था शंघाई तावन की तंजीम का, तो जब ये तंजीम ग्रेजुअली जो है ये तरक्की करती रही तो इसमें उन्होंने सबसे अहम ये किया था कि जो तमाम मुश्तरका जो बॉर्डर्स थे उसमें एक बामी एतमाद के फ़रोग के लिए अफवाज की कमी कही की गई थी। और मैं ये समझती हूँ कि अगर आप बामी एतमाद के रिश्ते को ज़्यादा मजबूत करते हैं तो अफवाज की जो एक मौजूदगी या उसके जो उसको अप टू डेट करना या उसको ज़्यादा जो सोफिस्टिकेटेड बनाना जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं रहती। और मेरा ख्याल है कि अगर तमाम ममालिक जो हैं बाहमी एतमाद के साथ आगे बढ़ते हैं तो अफगानिस्तान में जो फौज का मसला है या उसके पास फौजी कुव्वत का मसला है वो इलाके के ममालिक बेहतर तौर पे कर सकते हैं। तरबियत के हवाले से भी पाकिस्तान की फौज जो है वो बहुत बेहतर तरबियत दे सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है नेटो फोर्सेज को बुलाएं और वो तरबियत दें। मेरा कहने से मकसद ये है कि हमें इलाके में जब जंग नहीं करनी, हमें इलाके में जब अमन कायम करना है तो इनकी जो हथियार हैं या असला है उसकी ज़रूरत कम से कम हो जाती है। सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि बाहमी एतमाद को किस तरह फ़रोग दिया जाए। और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान का ये मौक़िफ कि अगर कोई अमन का कोई भी सिलसिला आगे बढ़ता है या उसकी कोई भी कोशिश की जाती है पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं है। और पाकिस्तान को अगर आप किसी तरह भी अलग करने की कोशिश करते हैं तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अवाम में भी जो नफरत का इजहार होगा वो मुस्तकिल कायम रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने
अफगानिस्तान
के लिए ही जो है अपनी सरहदों को गैर महफूज किया है, वहाँ मनशियात की जो है एक बहुत बड़ी स्मगलिंग यहाँ हो रही है और वो पाकिस्तान जाहिर है कि उसका एक बहुत उसका मनफी असर ले रहा है। तो ये
बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत किया। फारूक हसना साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आप देखें कि अफगानिस्तान के ताल्लुक से ज़ाहिर है कि नेटो की अफवाज अफगानिस्तान में तैनात हैं और बात हो रही इलाकाई तावन की, पाकिस्तान ने नवंबर में सुलाला चेक पोस्ट पर हमले के बाद से नेटो के लिए सप्लाई लाइन बंद कर दी और ज़ाहिर है कि अमरीका और नेटो पर यह बात गिरा गुजर रही हर एतबार से, माली इकतसादी सियासी हर एतबार से। और अभी अमरीकी वज़ीर जंग लियन पनेटा ने कहा है कि माहाना उनको $10 मिलियन का नुकसान हो रहा है। अब हम शुमाली रास्तों से नेटो को रसद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और पहुंचा रहे हैं, ज़ाहिर है कि शुमाली रास्ते में वही ममालिक आते हैं जिन्हें इलाकाई ममालिक कहा जाता है। अब अमेरिका की जो रसद रसानी का अमल है पाकिस्तान ने किसी भी वजह से रोक दिया, सही। अब अगर पाकिस्तान के साथ साथ ये जो इलाके के ममालिक हैं जिनको शुमाली रास्तों के ममालिक कहा जाता है अगर वो भी इजाज़त ना दें, जैसा कि अमेरिका ताल ठोंक के कहते हैं कि हम रूस के ज़रिए भेज सकते हैं, हम शुमाली जो सरहदें हैं उज़्बेकिस्तान ताजिकिस्तान अजरबैजान वगैरह वगैरह नाम लेता है उनके ज़रिए भेजते हैं, अगर वो लोग भी हाथ खींच लें तो क्या आप नहीं समझते कि अफगानिस्तान से नेटो और अमरीकी अफवाज को तेज़ी से निकालने में मदद मिलेगी?
अब इसमें असल में दो दो तीन मुख्तलिफ सवालात इसमें आ सकते हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान ने ये क्यों किया, पाकिस्तान ने ये किया कि पाकिस्तान ने समझा कि अमरीका अपनी जो खास किस्म की पॉलिसी है वो उस पर आगे वो बढ़ता जा रहा है और उसमें फिर फ्रस्ट्रेशन में आके झुंझलाट में वो ऐसी भी हरकतें कर रहे हैं, इल्जाम दे रहे हैं पाकिस्तान को, ISS को दे रहे हैं, तो वहां पे बहुत इख्तलाफ पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान पैदा हो गए हैं। देखिए ये दो तीन साल पहले का पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात के तनाजुल में इस सारे मामले को नहीं देखना चाहिए। अब इसमें बहुत तेजी के साथ तब्दीली आई है जिसमें पाकिस्तान अमरीका से खासा दूर हो गया है। जहाँ तक अफगानिस्तान का मामला है, दूसरे दीगर मामलात हैं। इस वक्त तकरीबन ना होने के बराबर पाकिस्तान और अमरीका की इक्तिसादी ताल्लुकात हैं, सियासी ताल्लुकात बहुत बुरे हैं, सिक्योरिटी ताल्लुकात बहुत बुरे हैं। तो इस अगर इस बैकग्राउंड में सारी चीज देखी जाए तो जैसे पहले भी कहा गया कि पाकिस्तान को शामिल करें, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी कोई साफ सुथरी किस्म की कोई चीज यहाँ पे होगी कि उस मुल्क को शामिल करें उसको ना करें। इसलिए अफगानिस्तान के अपने मामलात हैं, वो किस रुक जाते हैं, क्या वो करते हैं, ये अपने उनके डायनामिक्स वो काम करेंगे। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है उसमें भी एक सोच पाई जाती है बहुत ज्यादा यहाँ अवाम में कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के मामला से परे रहना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है, जहां तक पाकिस्तान का बॉर्डर है या कबायली इलाके हैं वहां तक तो पाकिस्तान अपने मामला को ठीक करे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अमरीका की जो सिक्योरिटी है या उनके जो सिक्योरिटी वफादात हैं कि वो अमरीका वहां से निकले तो वो उसकी हिफाजत पाकिस्तान करे, और यही पाकिस्तान और अमरीका के इख्तलाफ का बायस है।
बहुत शुक्रिया, आपका वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। फारूक हसना साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं और माजत की आपकी बात हमने दरमियान से रोकी। नाज़रीन, आपने हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की गुफ्तगू सुनी और जो लुब लबाब खुलासा और नतीजा निकला वो ये कि जब तक नेटो और अमरीका, जाहिर है कि अमरीका ही नेटो अफवाज की सरपरस्ती कर रहा है, अफगानिस्तान में मौजूद रहेंगी उस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली अब्बासी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।